अभी मेरा कुछ प्रवचन हुआ है अध्यात्म के बारे में, आप लोग सुने हैं और सुनने के लिए नहीं बल्कि वो मार्गदर्शन है, हर मनुष्य को चलने का मार्ग है, उसको अपनाने का मार्ग है। देखिए भाई, इस समाज में समाज की दीन दशा कैसे है, क्यों खराब होती है, तो हर जीव जंतु संभोगी क्रिया करता है, तो हर जीव जंतु अपने अपने अवस्था के अनुरूप संभोगी क्रिया करता है, लेकिन मनुष्य भी संभोगी क्रिया करता है, जीव भी करता है। जीव का संभोगी क्रिया ऐश्वर्यिक होती है और मनुष्य की संभोगी क्रिया कामुकता काम वासनागत होती है। तो देखिए, संभोग की तीन स्वरूप है, आप खूब बढ़िया से इस पर विचार करेंगे भाई, यह सब चीज हर जगह नहीं मिलता है, जो जिस बिंदु में प्रवेश करता है, जो जानता है वही बता पाएगा, हर आदमी नहीं बता पाएगा। तो संभोग की तीन स्वरूप है, पहला स्वरूप, पहला खंड शरीर, दूसरा मानसिक खंड, तीसरा आत्म खंड का है, तीसरा आत्म खंड का पहला शरीर। तो पहला शरीर क्षेत्र से क्या है, तो इसकी शरीर से संभोगी क्रिया का मतलब होता है, ये संभोगी क्रिया मध्यम वर्ग के मनुष्य करते हैं, आ मनुष्य का शरीर एवं वासना दोनों एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। इस खंड में होने वाले संभोग से जो बालक बालिका जन्म लेता है वह सब गुण बालक बालिका में पाया जाता है। इस खंड में वासनागत संभोग के अधिक स्वरूप होता है, शरीर से शरीर का जो शरीर रूप वासनागत संभोगी क्रिया होता है उसमें बालक बालिका इस खंड में वासनागत संभोग से अधिक क्रोध लोभ हिंसा घृणा बलात्कार आदि आदि अवगुणों से परिपूर्ण व्यक्तित्व से भरे हुए संस्कार का बालक बालिका का जन्म होता है। भाई ये भाई देखो, संभोगी क्रिया करने का भी एक अवसर होता है, एक समय होता है, एक निश्चित समय निश्चित स्थान का, जो संभोगी क्रिया आप अनचित समय अनचित स्थान पर करते हो उससे जो बालक बालिका जन्म लेती है वो आपको अनहित करती है, माता पिता से दुराव भ्रष्टाचार और समाज में घृणित व्यवस्था को पनकाने वाला होता है, ये है कामुकता द्वारा संभोगी क्रिया। दूसरा तल का मानसिक खंड का क्षेत्र है, सूक्ष्म शरीर और मनोमय शरीर आपस में दोनों दूध पानी के समान एक हो जाते हैं, इसलिए वह एक मानसिक खंड है और पहले तल में प्रत्यक्ष संभोग करता है स्थूल शरीर, लेकिन इसकी सूखा अनुभूति प्राप्त होता है वासना शरीर को। दूसरे खंड का माध्यम बनता है स्थूल शरीर, लेकिन संभोग करता है सूक्ष्म शरीर, इसकी सूखा अनुभूति होती है मनोमय शरीर को। इस खंड पर होने वाले संभोग से मध्य वर्ग के बालक का जन्म होता है, मध्य वर्ग के बालक बालिका का जन्म ही देश में मैक्सिमम विद्वान, माता पिता के आदर, समाज सुधारक आदि आदि वस्तु मध्यम वर्ग, जो औरत मर्द की इच्छा अनुकूल कुशलता पूर्वक समय के अनुकूल संभोगी क्रिया होता है, उसमें आनंद आता है, उससे बालक बालिका जो पैदा होते हैं अद्वितीय होते हैं, वो ऐसा बालक बालिका हर माता पिता को जन्म देना चाहिए, हर माता पिता को जन्म देना चाहिए, समाज को घृणित नहीं करना चाहिए। कुछ समय कुस्थान पर जो संभोगी क्रिया करता है वैसा बालक बालिका समाज में कुंठित होता है, कुंठित होता है। तीसरा आत्मखंड की क्षेत्र में, तीसरा है सूक्ष्म तल की संभोगी क्रिया। भाई ये सूक्ष्म तल की संभोगी क्रिया क्या होती है? तो भाई सूक्ष्म तल की संभोगी क्रिया कौन करता है? तो सूक्ष्म तल की संभोगी क्रिया अधिकांश जीव जंतु ही करते हैं। आश्चर्य है कि सूक्ष्म तल की संभोगी क्रिया द्वारा ही जीव जंतुओं का पैदाइश होता है। देखिए, बिना मादा के अनुमति मिले हुए नर कभी नहीं संभोगी क्रिया करता है। तो भाई बताओ, एक जानवर है जो बिना मादा के अनुमति के बिना वो संभोगी क्रिया नहीं करता है, आ एक नर है, एक नर है जो जो जानवर से कई हजार गुना गिरा हुआ है, जो कुछ समय कुछ स्थान पर अपने ही औरत के साथ अगर संभोगी क्रिया करता है तो उससे बालक बालिका जो पैदा लेते हैं वो कुरफाती होते हैं, अत्याचारी होते हैं। वैसे बालक बालिका का जन्म देने वाला कौन है? माता पिता है। इसलिए सूक्ष्म तल का संभोगी क्रिया वह है जो ऋषि महात्मा सूक्ष्म तल की संभोगी क्रिया करते हैं। ऋषि महात्मा लोग भी संभोगी क्रिया करते हैं, उन लोगों के पास भी जो सबसे सुंदर राजकन्याएं होती है वो ऋषि महात्मा का ही संबंध उनसे बनता है, उन्हीं लोगों के साथ शादी ब्याह होता है। लेकिन ऋषि महात्मा वो संभोगी क्रिया के लिए पत्नियों को नहीं रखते हैं, वो ध्यान क्रिया के लिए रखते हैं। उन पत्नियों द्वारा वो सुंदर सुंदर पत्नियां साथ में बैठाते हैं तो उससे काम ऊर्जा में वृद्धि होती है, और काम ऊर्जा में वृद्धि होती है तो वो ध्यान में जाते हैं, और ध्यान में जाकर वह काम आनंद प्राप्त करते हैं। काम वासनागत क्रिया द्वारा वो आनंद को नहीं प्राप्त करते हैं। अगर बाई दिवे नारी को अगर संभोगी क्रिया के लिए मादा व्याकुल कर देती है तब ऋषि महात्मा संभोगी क्रिया करते हैं, और उससे जो बालक पैदा होता है वो महान विद्वान, महान प्रचारक और महान देशभक्त और महान ऋषि मुनि का जन्म उसी से पैदा होता है। वही सूक्ष्म तल की संभोगी क्रिया है भाई, उसी को कहते हैं संभोगी क्रिया। काश आज पृथ्वी पर पुण्य आत्माओं को लिए गर्भ नहीं मिल रहा है, पृथ्वी पर भ्रमण कर रही है वो पुण्य आत्माएं, भ्रमण कर रही है, गर्भ नहीं मिल रहा है, कामुकता वासनागत आदि आदि तरह का गर्भ में संभोगी क्रिया हो रहा है, वैसे माता पिता की खोज पुण्य आत्माएं पृथ्वी पर कर रही है। इरले बिरले देश विदेश कहीं माता पिता उस तरह की वस्त्र क्रियाओं के लिए वाद होते हैं, वहीं पुण्य आत्माएं जाकर के प्रवेश करती है और उस घर में दीप चिराग की तरह बाल बच्चा वहां प्रकाशित होने लगते हैं। तो इसलिए भाई इसके लिए सचमुच अपनी भाव अपनी तपस्या अपनी अवस्था को देखते हुए मनुष्य को मैं संदेश देना चाहूँगा कि समाज में बाल बच्चों का कोई दोष नहीं है, अगर दोष है तो माता पिता में ही है। माता पिता अपन आचरण सही करें तो समाज अच्छी हालत में होगी, अच्छी हालत में होगी। मनुष्य का जीवन है क्या? तो मनुष्य का जीवन है क्या? मनुष्य मन शक्ति प्राण शक्ति आत्म शक्ति चित शक्ति इन सभी शक्तियों के जड़ में मन शक्ति ही अपनी गतिशीलता द्वारा सभी को शक्ति की जागृति देती है। कुंडलनी की जागृति लगभग 5 लाख प्रति सेकंड की गति से होती है। इस गति से मनुष्य के अंदर काम केंद्र की काम ऊर्जा वास में परिणित होकर और गतिशील हो जाती है। जब मनुष्य के काम ऊर्जा में गतिशीलता आती है तो मन अधिकांश काम केंद्र की परिधि में ही चक्कर काटता है। काम ऊर्जा की वाष्पीकरण गति में मन भी सूक्ष्म आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है। काम ऊर्जा की ओज गति द्वारा शरीर में पूर्ण रूप से रग रग में प्रवेश कर पूरा शरीर की अंदर न कहीं प्राण का स्थान है, न ही आत्मा का स्थान है, न कहीं चेतना का स्थान है। ये सभी शक्तियां अंतिम छोर पर लुप्त हो जाती है और वहां पूर्ण रूप से मन का ही अस्तित्व रहता है। रग रग में मन द्वारा संचालित गति जैसे पानी में नमक मिला देने पर पानी नमक एक हो जाता है, उसी प्रकार काम ऊर्जा की वाष्पीकरण को ओज के रूप में मन कायम हो जाता है और शरीर के अंदर की कंपन की गति को ले लगभग 5 लाख प्रति सेकंड की गति से कंपन कर चढ़ने लगता है। कंपन पर कंपन का लेप द्वारा चढ़ना और कंपन का कंपन के लेप द्वारा उतारना ही योग का मुख्य दृश्य है। इस क्रिया में मन पूर्ण शरीर में व्याप्त होती है। साधना आप जब भी जाइएगा तो हर जगह साधना और कुंडलनी हर जगह ब्रह्म शक्ति का ही स्वरूप से आपको चलना पड़ेगा। तो साधना और कुंडलनी है क्या? तो चेतना ओज और प्राण, देखिए तीन स्वरूप मनुष्य के अंदर का प्रभावशाली है। चेतना ओज प्राण, प्राण के साथ चेतना ओज संयुक्त करने के लिए शीर्षासन पद्मासन है। इन आसनों का उपयोग करते हुए हृदय चक्र पर ध्यान लगाना चाहिए, मन को स्थिर करना चाहिए, इसके पूर्व लंबा विश्राम करना चाहिए। योग में विश्राम का भारी महत्व है। जहां ऊर्जा का अर्थ प्राण ऊर्जा, शरीर में केवल प्राण ही ऐसा है जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, अन्य किसी तत्व में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए प्राण गतिशील है। प्राण जब कुंडल ब्रह्म शक्ति से जाके समन्वय बनाता है तभी अचेतन अवस्था ब्रह्म शक्ति की भंग होती है और उसमें भी गति आ जाती है। इसलिए प्राण ही गति है, प्राण ही सबको गतिशील करता है। प्राणायाम आश्रम आसन और प्राणायाम प्रारंभ होता है पूरक और रेचक न होकर केवल कुंभक स्थिति हो जाता है, जिससे नाभि के पास एक विस्फोट होता है जिसके कारण आंतरिक जगत की सभी आंतरिक शक्तियां विस्फोट के धक्के से सुषुप्त अवस्था की सभी शक्तियां की जागृति हो जाती है और आगे अंतर जगत की प्रकाश मई यात्रा खुल जाती है। इसके द्वारा साधक अपने योगिक अध्यात्म यात्रा पर चल पड़ता है। आगे चलकर ऐसे सात विश्राम केंद्र हैं, कुंडलनी तो महाशक्ति का अंग है, ताकि उसी का ठहराव केंद्र, स्वाधिष्ठान केंद्र, मणिपूरक केंद्र, अनहद केंद्र, विशुद्ध केंद्र, आज्ञा केंद्र, संसार केंद्र, ये सभी शक्तियों की जागृत अवस्था का विश्राम केंद्र है। अंतिम विश्राम स्थल पर प्रथम सतगुरु का दर्शन, फिर दृष्टा का दर्शन और अंत में अपने स्वरूप का दर्शन होता है। जो परम स्वरूप परमात्मा धीरे धीरे विलीन होता है और मनुष्य जो प्राकृति को देखता है वही प्राकृति धीरे धीरे विलीन होते होते अंत में परम शक्ति परमात्मा बन जाती है। वही शक्ति परमात्मा धीरे धीरे विलीन होते होते प्राकृति के स्वरूप कर बन जाता है। इसलिए प्राकृति और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता है। चेतना के दो रूप हैं, समिष्ट रूप चेतना और विशिष्ट रूप चेतना पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जिसका आंशिक रूप मूलाधार है और गुप्त स्थान केंद्र में काम केंद्र के पास निवास करता है। यह आंशिक रूप से समिष्ट रूप चेतना क्रियाशील नहीं होती है। निष्क्रिय अवस्था में कुंडलनी मारकर सोई रहती है, लेकिन विश्व ब्रह्मांड के संबंध क्रियाशील समिष्ट रूप चेतना से बना रहता है। काम केंद्र के पास जो कुंड है उसी कुंड में समिष्ट शक्ति का निवास होने से इसको कुंडलनी भी कहते हैं। पहला शरीर संभोग होता है, जिसका आनंद अनुभूति सुखा अनुभूति अंतर मन को होती है। इसलिए सिद्धि योग